मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण, शास्त्री जी, विधायकगण, देवी और सज्जनों, कितने वर्षों के बाद रीवा आने का अवसर मिला है और ये शास्त्री जी का अनुरोध था जिस पर यहां आना पड़ा। ये काम जो हमारे हाथ से कराया गया आज नेत्रहीन महाविद्यालय की नींव डलवाई गई, ये एक बहुत शुभ कार्य है। जैसे शास्त्री जी ने बताया, हमारे देश में नेत्रहीनों की संख्या बहुत बड़ी है। उसके तह में बहुत से वर्गों की गरीबी भी है और बहुत लोगों की अशिक्षा भी उसके लिए कारण है। थोड़ी सावधानी ली जाए बच्चों की आंख साफ करने के लिए तो बहुत सी आंखें बचाई जा सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि खास करके देहात में माताओं को ये शिक्षा दी जाए कि अपने बच्चों की आंख को साफ रखें। साफ रखने में कोई पैसा नहीं लगता है, खर्च नहीं होता है, तो अधिकांश आंखें तो उसके वजह से खराब होती हैं, कुछ पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण से भी खराब होती हैं और कुछ आकस्मिक घटनाओं से भी खराब हो जाती हैं। प्रकृति का ऐसा नियम है कि कोई अंग जब काम करने के लायक नहीं रहता तो कोई दूसरा अंग उस शक्ति को लेकर के ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरता है। अगर देखने की शक्ति क्षीण हो गई तो स्पर्श की शक्ति बढ़ जाती है या स्वर की शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा देखने में आया है। और यही कारण है कि नेत्रहीन लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे बारीक काम कर दिए जाते हैं जिसको देख करके आश्चर्य होता है। दिल्ली में एक बालिकाओं का विद्यालय है जिसमें हमारी पत्नी कुछ हिस्सा लेती हैं, चलाती हैं, कई एक सौ लड़कियां उसमें हैं। वो जब गाना गावे तो मालूम होता है कितनी शिक्षित लड़कियां गाना गा रही हैं। तस्वीर बना दें तो पता नहीं चलता कि बिना आंख में ज्योति के रंग भरना कैसे उनके लिए संभव है। स्वेटर बुन दें और उसमें फूल काट दें, भिन्न भिन्न तरह के रंग डाल दें तो आश्चर्य होता है कि ये रंग की पहचान कैसे उनको, लेकिन ये सब उनको स्पर्श हो जाता है। ब्रेल के द्वारा लिखा हुआ जो पढ़ने लगे तो उंगलियां ऐसे चलती हैं तेजी के साथ उस पर कि सुनने वाला कोई पता ही नहीं लगता कि लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या स्वयं मौखिक भाषण दे रहे हैं। मैंने एक और तजर्बा किया जब डाक और तार विभाग का मंत्री था तो बंगलोर टेलीफोन फैक्ट्री में कुछ नेत्रहीन लड़कियों को काम पर लगाया कारखाने में और उनको ऐसा काम दिया जो रिपीटिटिव काम है, एक ही काम को बराबर करते थे, तो उसमें देखा कि नेत्रहीनों की कुशलता नेत्र वालों की कुशलता से अधिक थी, क्योंकि नेत्र वाला तो है इधर उधर देख करके आपस में बातचीत भी करता और नेत्रहीन सिवाय अपने काम में उसकी उंगलियां चलती रहती हैं। यहां मैंने अपने रक्षा मंत्रालय में भी कुछ कामों में उनको लगाया है। एक काम उनको बहुत स्थानों पर दे रखा है, हमारे विभाग में जितनी बेंत की कुर्सियां हैं उनमें छेद हो जाता है, उनको मरम्मत करना होता है, तो मैंने हुक्म दे रखा है कि ये सब नेत्रहीन विद्यालय के लड़कियों के द्वारा मरम्मत कराया जाएगा। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि उनको स्वावलंबी बनाया जा सकता है। उन लड़कियों में से कई एक लड़कियां ग्रेजुएट बनी हैं, कुछ पीएचडी भी बनी है, कुछ अमेरिका जाकर के वहां से डिग्री हासिल करके आई हैं और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक लड़की यहां से एमए पास करने के बाद अमेरिका गई तो अकेले सफर करके गई। तो उनका कोई न कोई अंग इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि क्षति की पूर्ति बहुत अंश में हो जाती है। ज्योति तो नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा कोई न कोई अंग उभरता है जिससे उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार मिल जाता है, उसकी दक्षता मिल जाती है। तो ये शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। एक बाघ का अभाव अभी तक मालूम होता है उच्च शिक्षा के संबंध में, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के मिलने का अभाव। हमारे जिस महाविद्यालय विद्यालय का जिक्र कर रहा हूं, वहां पर एक काम उन लोगों ने ये भी लिया है कि उस शिक्षा के पाठ्यक्रमों को ब्रेल में लिखवाना। सरकार से सहायता भी इनको मिली है, क्योंकि अनुभव ऐसा हुआ कि बहुत से छात्र जो महाविद्यालय की शिक्षा में जाते हैं, कॉलेज की शिक्षा में जाते हैं, उनको पाठ्य पुस्तकों का अभाव बहुत खटकता है और सिर्फ प्रोफेसर के भाषण के ऊपर संतोष करके या नोट लेकर के उनका काम नहीं चल पाता है। अगर अधिक से अधिक नेत्रहीन लोगों को शिक्षा दी जाए, साधारण शिक्षा एजुकेशन या किसी न किसी दस्तकारी की शिक्षा दी जाए, तो उनको समाज का एक उपयोगी अंग बना दिया जा सकता है, उनको स्वावलंबी बनाया जा सकता है और मुल्क की समृद्धि में उनके द्वारा भी अंशदान हो सकता है। तो शास्त्री जी की कल्पना एक बहुत अच्छी कल्पना है, बड़े आदर्श के साथ इन्होंने आरंभ किया है। मुझको इसमें संदेह नहीं है कि उदार जनता के द्वारा और सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस शुभ कार्य में यथेष्ट सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें एक आदर्श महाविद्यालय बन सके, जैसा शास्त्री जी की कल्पना है। मेरी मंगल कामना है कि जिस संस्था की नींव डालने का सौभाग्य मुझे मिला है वो शीघ्र से शीघ्र पूरा हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलीभूत हो सके। मैं शास्त्री जी को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।